शांति शांति शांति। उपस्थित प्रियात्मन, भारतीय संस्कृति में जितनी पवित्र व्यवस्थाएं हैं, व्यक्ति अपनी शक्ति को समझे। हम 100 साल के लिए इस धरती पर आए हैं। हर व्यक्ति, हर नर, हर नारी जब अपनी शक्ति को समझ लेता है तो व्यक्ति उठता है नर के रूप या नारी के रूप में। फिर आपका परिवार, आपका समाज, आपका देश। जब भी हम आपसे मिलते हैं, चाहे वो किसी जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो, गुरु पूर्णिमा हो या जन्मदिवस हो, रहस्य एक ही है कि हम सब कोई भी उपासना करते हो, कहीं भी हमारा जन्म हुआ हो, हम अपने आप को पहचाने। आप कर्मयोगी हैं, भक्ति योगी हैं, ज्ञान योगी हैं, ध्यान योगी हैं, लय योगी हैं। रास्तों का संबंध किस रास्ते से आप चल रहे हैं आपके साथ है। अंतर हो सकता है, विरोध नहीं है। संभव है आपकी उपासना सामने पक्ष की उपासना से मेल न खाती हो, लेकिन अंतर को विरोध न मानिए। हमारी कितनी शक्ति जो अपने निर्माण में लगनी चाहिए, उसके बजाय विरोध में, राग द्वेष में, ईर्ष्या में समाप्त हो जाती है। आप कोई भी उपासना करें, लेकिन ठीक से करें। आप राम की पूजा करते हैं, कृष्ण की, शंकर की, गुरु की, जलाराम बापा की, सत्साई बाबा की, किसी महापुरुष की, लेकिन वो किया जो कुछ आपने है, क्या हुआ है? आप समझ के कर रहे हैं। जब भी आपके समक्ष आता हूं, आपके समक्ष अपने विचारों से आपको जगाने का ही प्रयास किया है। 2 साल पहले भी जन्म दिवस पर आपके समक्ष था। हर साल हम मिलते हैं, कभी गुरु पूनम पर, कोई निमित्त से। आज भी आपके समक्ष जन्म दिवस के निमित्त मिले हैं। कुछ बातें आपसे करना चाहूंगा जो आपके लिए है, आपके विकास के लिए है, आपके जीवन के लिए है। अक्सर एक प्रश्न आपके सामने उठता है कि जीवन में द्वंद्व क्यों है? ये रचना ही ऐसी है। अगर इस रहस्य को आप समझ लेंगे तो अपने जीवन को समझ लेंगे। जीवन एक रहस्य है, और रहस्य नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। और रहस्य को अगर समझ लें तो समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जिसे आज विज्ञान रहस्य मानता है, उसी को हमारे ऋषियों ने माया का स्वरूप दिया। एक व्यक्ति हारमोनियम पर राग रागिनी के द्वारा आपको मुग्ध कर रहा, व्यक्ति वही है, हारमोनियम वही है, तबले पर भी तबला वादक है वह एक है, तबला भी वही है, गिटार वही है, सितार वही है। एक उदाहरण के रूप में आपके सामने रखना चाहता हूं। आपके समक्ष हारमोनियम है, कई राग रागनियां उसमें निकल रही हैं। अगर हारमोनियम सीख जाएं आप किसी गुरु के सानिध्य में रह करके अगर सीख जाएं तो राग रागियों का रहस्य आपको मालूम हो जाएगा। लेकिन आप सीखे नहीं, जानने के मन में जिज्ञासा नहीं पैदा हो तो आप प्रसन्न होंगे, आनंद में होंगे, लेकिन एक हारमोनियम से, एक व्यक्ति से इतने राग रागियों का किस तरह से निकलना संभव हुआ वो आपके लिए रहस्य ही रहेगा। रहस्य इसलिए है कि जिसे पकड़ना चाहिए उसे आप नहीं पकड़ रहे हैं। आप राग रागनी को पकड़ रहे हैं, तबला वादक को नहीं, हारमोनियम गायक को नहीं। आप जगत को पकड़ना चाहते हैं लेकिन रहस्य समझ में नहीं आ रहा। जगत पति को पकड़ लें, समझ लें तो सारे जगत का रहस्य आपकी समझ में आ जाएगा। ये रहस्य ही आपके समक्ष बताने का प्रयास करूंगा। इस रहस्य को अगर आप समझ लेंगे तो कोई दुख नहीं है, कोई कमजोरी नहीं है, आप विराट के अंश हैं, वो पवित्र है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, हम सब उसकी संतान हैं, माता पिता का गुण संतान में आता है, हमारा परम पिता विराट है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, हम सब उसकी संतान भी शुद्ध बुद्ध और मुक्त हैं। लेकिन रहस्य न समझने के कारण हम अपने आप को कुछ और समझ रहे हैं। प्रथम तो मैं उपासना की बात करूंगा। अक्सर मेरे सामने प्रश्न उठे हैं, आज विज्ञान भी इसके समर्थन में आ गया है। आपका विज्ञान दो स्वरूप में उपासनाओं को उपस्थित कर रहा है, प्रतीक उपासना, अहंग्रह उपासना। कोई राम की पूजा कर रहा है, कोई कृष्ण की कर रहा है, कोई शिव की कर रहा है, कोई गुरु की कर रहा है। और आप अगर किसी की नहीं पूजा करते तो अपनी तो करते हैं, अपना आदर चाहते हैं, अपना सत्कार चाहते हैं, अपने जीवन को ऊंचा उठाना चाहते हो, कुछ तो चाहते हो। साकार उपासनाओं में कहीं कोई अंतर नहीं है। वह रहस्य थोड़ा आपको मैं बता दूं। उस रहस्य को समझ लेंगे, हमारे यहां हमारी संस्कृति में कभी कोई विरोध नहीं था, लेकिन बड़े प्यार से कह रहा हूं, जब हम गुलाम रहे, हम पर शासन करने वालों ने हमें एक दूसरे से अलग करने की कोशिश की। हिंदुस्तानियों में जबरदस्त कर्मयोग है, समर्पण भाव है, ज्ञान है, हर चीज हमारे पास है, और यही जब लोगों ने हम पर राज किया तो जानते थे भारत हर तरह से समृद्ध है। भारत की संस्कृति सूर्य की संस्कृति है, लेकिन उन लोगों ने हमें आपको बांटा, हमारे और आप में विरोध पैदा किया, अंतर को विरोध मान लिया, और हमने उसे स्वीकार करके जो शक्ति अपने निर्माण में लगानी थी एक दूसरे के विरोध में खर्च करके कहां से कहां पहुंच गए। तो मेरे प्रिय आत्मन, आप किसी की पूजा करो, साकार की पूजा करो या निराकार की, लेकिन पूजा जो करो समझ के करो। वो पूजा का स्वरूप क्या है, वेद विज्ञान, ज्ञान और विज्ञान दोनों का आधार लेकर आपके समक्ष भारतीय संस्कृति की बातें रखना चाहता हूं। पढ़ा लिखा समाज उपस्थित है और समझने का प्रयास करे। यहां हमारी पुत्रियां बैठी हैं, शिष्य बैठे हैं, सब खूब पढ़े लिखे हैं, डिग्रीज है, अच्छी पोस्ट है, समझदार हैं। और आप लोगों के मन में अगर किसी तरह का कोई द्वंद्व है, शंका है, तो उसका समाधान मैं करना चाहूंगा। क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति तर्कशास्त्री है, तर्क करता है। हमारा आपका तर्क सर्जन के लिए होना चाहिए, हमारा आपका तर्क अपने आप को उठाने के लिए होना चाहिए। संभव है कि कोई तर्क अपनी जगह ठीक हो, लेकिन अगर व्यक्ति के पतन की बात उस तर्क में है, तर्क अपनी जगह ठीक हो सकता है, लेकिन सत्य है आपका विकास, व्यक्ति विकास, और आपके विकास में वो तर्क अगर पतन की भूमिका अदा करता है तो उसके आगे हमें बढ़ जाना है। उलझने की जरूरत नहीं, किसी से लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं, हमें उसकी जरूरत नहीं है, और किसी से घृणा करने की भी जरूरत नहीं। तो सबसे पहले सरल बात, उपासना के आधार पर आप सबके समक्ष रखना चाहूंगा, जिसे भी आप मानते हैं उसमें सरल विश्वास रखें। ट्रस्ट लाइक ए चाइल्ड, जैसे छोटा बच्चा अपने माता पिता में कितना विश्वास रखता है, कोई शंका नहीं, कोई अनादर नहीं। घर के बाहर बच्चा खेलने गया, किसी तरह का भय पैदा हुआ तो दौड़कर माता पिता की गोद में बैठता है। हमारी बेटी निर्मला ने कहा, कभी परिस्थिति से कुछ भय आ जाता है, कुछ रहस्य समझ में नहीं आता, तो हम गुरु मनीषानंद के पास जाते हैं। मैं आपका माता पिता हूं, आप मेरे पास नहीं आएंगे तो कहां जाएंगे। लेकिन इस मनीषानंद को भी मनीषानंद बनने में बहुत कठिन मार्गों से गुजरना पड़ा, बहुत सरलता से आपके बीच में नहीं आया हूं। तो सबसे पहले जिसे भी आप मानते हैं, राम को कि रहीम को, कृष्ण को कि करीम को, जीसस क्राइस्ट को, जिसे भी मानते, हमारी संस्कृति सूर्य संस्कृति है, पूर्ण संस्कृति है, पूरे विश्व के प्रति हम शुभ भावना रखते हैं, हम अंतरिक्ष की शांति की बात करते हैं, पृथ्वी की शांति की बात करते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने जो कुछ भी कहा पूरे विश्व को सामने रखकर कहा, हमारी प्रार्थना में पूरे विश्व के लिए सुख की कामना की गई है, भावना पैदा की गई है। और बड़े प्यार से कहूंगा कि हमारी संस्कृति आज पूरा विश्व सादर प्रणाम करते हुए स्वीकार कर रहा है। हम आप बड़े भाग्यशाली हैं कि भारत में हमारा आपका जन्म हुआ, नर या नारी के रूप में अच्छे परिवार में जन्मे, अच्छा शिक्षण मिला, अच्छे माता पिता मिले, हम आप कितने भाग्यशाली। अब आज हम अपने आप को भाग्यशाली कैसे बनाएं? सबके माता पिता अच्छे हैं, उसे संपत्ति की कोई बात नहीं, मैं माता पिता की बात कर रहा हूं। आपका जन्म झोपड़ी में हुआ कि महल में? माँ माँ ही होती है, पिता पिता ही होते हैं, झोपड़ी महल से कोई मतलब नहीं। एक पशु को भी देख लीजिए, चाहे वह करोड़पति घर में वो गाय है कि झोपड़ी के सामने है, लेकिन जब वो माँ बनती है तो अपने बच्चे को कितना प्यार करती। मैं यहां संपत्ति की बात, कोई बड़े पद की बात नहीं कर रहा हूं कि आप राष्ट्रपति हैं कि प्रधानमंत्री हैं कि राज्यपाल हैं कि कलेक्टर हैं कि करोड़पति हैं। तो राष्ट्रपति करोड़पति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल माता पिता की बात आपके कर रहा हूं। ये हमारी संस्कृति में माता पिता का जो इतना आदर है क्यों है? तो सबसे पहले सरल विश्वास अपने माता पिता में रखो। हम अपने माता पिता को देख रहे हैं। एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आया, कहता स्वामी जी आपने परमात्मा को देखा है? मैंने कहा देखा क्या है, परमात्मा की गोद में बैठा है, खेला है, तुम भी हो लेकिन तुम्हें मालूम नहीं। कहा स्वामी जी बड़ी अच्छी आपकी कृपा होगी, बता देंगे जो तुम्हारे दुख को दूर करे, जो तुम्हारी कमजोरी को दूर करे, जानते हुए भी जो तुम्हें क्षमा करे वही भगवान है। आपके माता पिता कितनी गलतियां आपने की क्षमा किए कि नहीं? कहे हां स्वामी जी। उनकी गोद में बैठे कि नहीं? बैठा स्वामी जी। जब जरूरत पड़ी तो आपकी कमजोरी को दूर किया कि नहीं? आप बीमार पड़े वैद्य बुलाए, डॉक्टर बुलाए, और कभी आप गंभीर रूप से बीमार पड़े तो आपके माता पिता ने कहा डॉक्टर साहब जितना पैसा खर्च हो जाने दीजिए, लेकिन मेरे बच्चे को बचाइए। कभी आपसे कोई भूल हुई, आपके माता पिता वकील के पास गए, वकील से कहा मैं जमीन बेच दूंगा, मकान बेच दूंगा, लेकिन मेरे बच्चे को कैद नहीं होनी चाहिए। आखिर में क्यों? अब देख लीजिए, हम भगवान की गोद में बैठे माता पिता, और बचपन में कितना सरल विश्वास था, क्योंकि उस समय आप निर्दोष थे, उस समय आप पवित्र थे, शुद्ध थे, मां के बिना रह नहीं सकते थे, पिता के बिना रह नहीं सकते थे। आज शायद कहीं कुछ अहंग तो नहीं आ गया, राग तो नहीं आ गया, द्वेष तो नहीं आ गया। इसी बात को जा समझिए, आप फिर से 2 साल के बच्चे बन जाइए। जब हम 2 साल के थे तो हमारे माता पिता हमारा कितना ध्यान रखते थे। स्वामी जी मैं 2 साल का बन जाऊंगा, यही तो कहता हूं, जब आप 2 साल के हो जाओगे तो परमात्मा आपका ध्यान करेगा। जब परमात्मा के ध्यान में आप हैं तो जिस समय जिस चीज की आवश्यकता होगी वो परमात्मा देगा, मांगने की कोई जरूरत नहीं। इस बात को समझे आप। जब हम आप छोटे थे, खेलने बाहर गए होंगे, आप हरिद्वार भी गए होंगे, काशी भी गए होंगे, बड़े लोग माउंट आबू भी गए होंगे, हिमालय गए होंगे, कश्मीर गए होंगे, आप गए हरिद्वार गए कि कश्मीर गए, लेकिन जब मां बाप को नहीं देखा तो आपको कश्मीर अच्छा लगा? मैं 2 साल वाली बात कर रहा हूं। आपको कश्मीर अच्छा लगा? नहीं। आपको हरिद्वार अच्छा लगा? नहीं। आप रोने लगे। किसी ने पूछा बेटा तू क्यों रो रहा है? मेरी मम्मी नहीं मिल रही है, मेरे डैडी नहीं मिल रहे हैं। जब आप मम्मी का हाथ पकड़े थे, आपके साथ में आपके पिता थे, डैडी थे, गंगा जी अच्छी लगी, हरिद्वार अच्छा लगा, जम्मू कश्मीर अच्छा लगा, लेकिन जब आप उनसे अलग हुए किसी तरह भीड़ के कारण, जब मां और पिता का सानिध्य नहीं रहा, उनकी उंगली छूट गई, वही हरिद्वार वही जम्मू कश्मीर क्यों नहीं अच्छा लग रहा है? मेरे प्रिय आत्मन, आइए हम आप अपने परमात्मा का जो भी स्वरूप है, समष्टि में आप बौद्ध हैं कि महावीर हैं कि पारसी हैं कि हिंदू हैं, आज समाजी हैं, सबके लिए कह रहा हूं, जिसे पकड़ो तो जैसे हरिद्वार कश्मीर में माता पिता की उंगली पकड़कर आप थे बीच में, एक तरफ मां का हाथ पकड़ा, एक तरफ पिता का हाथ पकड़ा, कितना आनंद था। आनंद इसलिए गायब हो गया है कि परमात्मा ने आपको नहीं छोड़ा है, आपने परमात्मा को छोड़ दिया। और जब परमात्मा की उंगली पकड़ोगे तो ये पूरा जगत अच्छा लगेगा, कहीं कुछ बुरा लगने वाला नहीं। लेकिन बात 2 साल की कर रहा हूं, फिर से बच्चा बनी है, कोई भी उपासना कीजिए। एक बार एक विदेशी मेरे से पूछा कि स्वामी जी, मैं वृंदावन गया, मंदिरों का दर्शन किया, वहां भगवान कृष्ण का बाल स्वरूप ही देखने पाया, इसके पीछे क्या रहस्य है? जवाब दिया, भगवान कृष्ण कहते हैं, बालक बनकर आओगे तो तुम्हारे साथ खेलूंगा, करोड़पति बन के आओगे तो वापस जाओगे। मैं कहता करोड़पति बनो, राष्ट्रपति बनो, लेकिन साधना की बात बता रहा हूं, ऐसा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हमने तो अच्छी तरह भारतीय संस्कृति को देखा, कोई खंडन ही नहीं है। या देखिए एक किस्सा बताऊं आपको, रामकृष्ण परमहंस का दर्शन करने के लिए जब संपर्क में आए, उस समय नरेंद्र नाम था, प्रभावित हुए, उनको समाधि लगी, परम तत्व का दर्शन हुआ, तो नियम बनाया कि रोज सुबह 7 बजे मुझे प्रभु सदगुरुदेव का दर्शन सुबह 7 बजे करना है। एक दिन जल्दी पहुंच गए विवेकानंद, रामकृष्ण कहते हैं, नरेंद्र आज बहुत जल्दी आ गया। नरेंद्र हाथ जोड़कर कहते हैं, गुरुदेव ये पागल आदमी की मेहरबानी है। कहा बेटे क्या? कहा रास्ते में पागल आदमी लकड़ी लेके मेरे पीछे दौड़ा, तो मैं इतना दौड़ा कि जल्दी आपके पास आ गया, उसे मैं उलझा नहीं। अब ये समझने की बात है, हम आप होते, अरे मैं मनीषानंद महामंडलेश्वर हूं, हमारे लाखों चेले हैं, अभी एक चेले को बुलाता हूं, तेरे को थप्पड़ मरवाता, नहीं। हमारे संतों में, हमारी संस्कृति में रिएक्शन नहीं है, रिस्पांस है, हमें देना है, सब कुछ करना है, लेकिन जा समझो जो तुरंत या रिएक्शन और रिस्पांस का अंतर समझना। किसी ने हमें गाली दी और हमने भी गाली दी, ये रिएक्शन है, और रिस्पांस क्या है? भगवान बुद्ध के पास, महावीर के पास, जीसस क्राइस्ट के पास, ये सब कहते हैं। जब भी परिस्थिति विपरीत हुई, इन महापुरुषों में रिएक्शन नहीं था, प्रतिक्रिया नहीं थी, एक रिस्पांस था, हे प्रभु ये नादान है इनको माफ करना, मैं आपकी स्थिति इतनी ऊंची बनाना चाहता हूं। आप महावीर की पूजा करो, भगवान बुद्ध की पूजा करो, मनीषानंद की पूजा करो, अपने गुरु की पूजा करो, इसके समर्थन में हूं। लेकिन मेरे प्रिय आत्मन, कल का पुत्र आज पिता बन गया तो कल का मेरा शिष्य गुरु भी तो बनना चाहिए कि हमेशा शिष्य ही रहोगे? परिवर्तन, जब हम चले थे तो 5:15 था, ये तो क्रम बता रहा हूं, देखिए क्रम। और पूनम आ रही है, पूनम जा रही है, और वही के वही बैठे हुए हैं। क्या परिवर्तन आप में आया? आपका लड़का, आपका पुत्र जो आपको पिता कहता था, आपको पिता कहते कहते वो पिता बन गया, तो आपको खुशी हुई कि नाराजगी? खुशी हुई तो आप सब मेरे परिवार के हैं, मुझे गुरु कहते कहते आप भी गुरु बनिए। गुरु मतलब श्रेष्ठ, रिएक्शन नहीं रिस्पांस, गुरु में रिस्पांस होता है, रिएक्शन नहीं। वही बात आपको इशारा कर रहा, हर चीज को प्लस में लो, होगा। अब आप कहेंगे स्वामी जी अगर कोई हमें कुछ कहे तो उसका उत्तर मैं दूंगा, लेकिन अभी संकेत कर दूं, राम ने रावण के साथ युद्ध में रिएक्शन नहीं लाया, रिएक्शन लाते थे जो ही सुने कि सीता का हरण हुआ, वहीं बैठे बैठे बाण चलाकर पूरी लंका को भस्म कर देते। आज विज्ञान भी कह रहा है राम में इतनी शक्ति थी, कृष्ण बैठे बैठे जब दिखा दिया तो ये कैसे उंगली फिराता, इनका सत्यानाश हो जाता। लेकिन हमें आपको कुछ राम कुछ सिखा रहे हैं, वही बात मैं आपको बताना चाहता। राम ने युद्ध किया, रिस्पांस था, किसने सुदर्शन चलाया, साथी बने, रिस्पांस था, रिएक्शन नहीं था। जहां अंतर समझिएगा, यहां अच्छे अच्छे वकील बैठे हैं, जो तुरंत क्रिया की प्रतिक्रिया है वो रिएक्शन है। हमारी संस्कृति में रिएक्शन की बात नहीं कही गई है, हम में है रिएक्शन, लेकिन जो बात मैं बताना चाहता हूं हमें इसके ऊपर जाना है। अब देखिए रिएक्शन की बात बताएं आपको छोटी छोटी। आप करोड़पति हैं और किसी ने मान लीजिए श्राद्ध बस आपको कह दिया, ये तो नाम मात्र का करोड़पति है, बहुत कंजूस है, कितना रिएक्शन आया? अपने पट्टा वाले से कहो कि इसको बुला दो थप्पड़ मार। अरे किसी के कहने से आप गरीब हो गए? आप अपने आप को नहीं समझे? महावीर ने, बुद्ध ने, शंकराचार्य जी ने, बाबा श्री चंद जी ने, या मनीषानंद ने, आज के प्रमुख स्वामी ने, जो भी है सबको, मैं महावीर ने, बुद्ध ने, अपने को समझा, कुछ भी घटना घटी लेकिन कभी प्रतिक्रिया नहीं पैदा हुई। आज भी हमारे पास जो संत है मैं जानता हूं, यही बात मैं आप में लाना, जरूरत पड़ेगी तो रावण से युद्ध करना पड़ेगा, जरूरत पड़ेगी तो हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा, जरूरत पड़ेगी तो पुलिस के पास जाकर अर्जी लिखानी पड़ेगी। मैं इस सब से आपको नहीं हटा रहा हूं, लेकिन पहले क्या बताना चाहता हूं वो भी एक रिस्पांस है, हम समझाएंगे। भगवान कृष्ण ने कहा चल दुर्योधन तू 5 गांव दे दे राज कर, ये रिस्पांस था।